लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमारों और वयोवृद्धों की सेवा में संलग्न हैं, विशेष रूप से निर्धनतम देशों में। हमारी प्रार्थना है कि उन्हें सरकारों और स्थानीय समुदायों का पर्याप्त समर्थन मिले। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, हर मानव का जन्म इस धरती पर एक विशेष कार्य को पूरा करने हेतु हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ईश्वर ने हमें अपने एक खास मकसद को पूरा करने हेतु इस धरती पर भेजा है। यही कारण है कि हर मानव अपने रंग रूप और अपने गुणों में अद्वितीय है, जिसके द्वारा वह अपने जीवन में एक विशिष्ट कार्य को पूरा करता है। हम कहाँ थे, क्या थे, कैसे थे और किसने हमारी सुधि ली? अपने जीवन के उद्गम पर चिंतन करते हुए हम जीवन के इस सार को समझ सकते हैं। श्रोताओ, हमने अपनी इच्छा, शक्ति और विचार से इस दुनिया में आने का चुनाव नहीं किया, बल्कि ईश्वर ने हमें जीवन का अनमोल दान दिया है, जिससे हम इस सुंदर उपहार को दूसरों के संग बांट सकें। अपने जीवन को बांटने के इसी क्रम में हम यह कहते हैं, जीवन हमारा है लेकिन हम इसे दूसरों के लिए जीते हैं। हमारे जीवन की सार्थकता इस जीवन को अपने लिए जीने में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीने में है। और यही कारण है कि हम अपने जीवन में सच्चा आनंद और सच्ची खुशी का अनुभव तब करते हैं जब हम निस्वार्थ भावना से किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं। ईश्वर ने हमें जीवन इसीलिए दिया है कि हम दूसरों के जीवन में खुशी और उमंग ला सकें। श्रोताओ, जीवन के इस सार से अवगत होना हमें अपने जीवन की गहराई पर उतरने और इस पर चिंतन करने की मांग करता है कि ईश्वर ने मुझे यह जीवन आखिर क्यों दिया है। अपने जीवन पर चिंतन हमें यह पहचानने में मदद करेगा कि हम में वह कौन सा गुण है जो हमें दूसरों से हटकर थोड़ा अलग बनाता है, जिसका उपयोग करने की प्रेरणा ईश्वर हमें देते हैं, जिसके द्वारा हम दूसरों के संग ईश्वरीय आनंद को साझा करते हैं। श्रोताओ, प्रभु येसु ख्रिस्त के स्वर्गारोहण आराधना विधि चिंतन हेतु लिया गया सुसमाचार हमें अपने जीवन के रहस्य को समझने हेतु एक निमंत्रण देता है। येसु ख्रिस्त ने अपने जीवन में मिले प्रेरिताई कार्य को समझा और उसे पूरा कर पिता के पास लौट गए। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए इस बात की थाह लें कि क्या मैं अपने जीवन की प्रेरिताई को समझता हूँ। मैं अपने जीवन को किस तरह से जी रहा हूँ? क्या मैं अपने जीवन के उद्देश्य को सही रूप में समझता हूँ? क्या ईश्वर से मिला जीवन का सर्वोत्तम दान मुझे दूसरों के लिए अच्छा उपहार बनने में मदद करता है?
यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। तुम इन बातों के साक्षी हो। देखो, मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, इसलिए तुम लोग तब तक शहर में ठहरे रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न न हो जाओ। इसके बाद यीशु उन्हें बिथानिया तक ले गए और उन्होंने अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। आशीष देते देते वह उनकी आंखों से ओझल हो गए और स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। वे उन्हें दंडवत कर बड़े आनंद के साथ यरूशलेम लौटे और वहाँ हर समय मंदिर में रहकर ईश्वर की स्तुति करती रहे।
श्रोताओ, ईश्वर के जीवनदायी सुमधुर वचन हमें ईश्वरीय मेल मिलाप का एक साधन बनने में मदद करे, जिससे हम अपने जीवन में दूसरों के लिए ईश्वरीय आशीष और कृपा दानों का स्रोत बनते हुए दूसरों को एक अच्छा जीवन जीने हेतु प्रेरित कर सकें, जो हमारे सानिध्य में आते हैं। श्रोताओ, प्रेरित चरित से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए उन बातों का जिक्र करता है जिसे यीशु ख्रिस्त ने इस पृथ्वी पर रहते वक्त अपने चुने गए शिष्यों को बतलाया और सिखलाया। यीशु ख्रिस्त ने उन्हें बहुत से चमत्कार दिखलाते हुए इस बात का प्रमाण दिया कि वे सचमुच जीवित ईश्वर हैं। श्रोताओ, यह हमें इस बात से वाकिफ कराता है कि यीशु ख्रिस्त इस दुनिया में क्यों भेजे गए थे। यीशु ख्रिस्त अपने कार्यों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने हेतु अपने शिष्यों को अपने सामर्थ्य से परिपूर्ण करने की चाह रखते हैं, अतः वे उन्हें तब तक यरूशलेम में एकत्रित रहने को कहते जब तक वे उन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति से संपन्न ना करते हों। श्रोताओ, एफेसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ पौलुस की प्रार्थना को हमारे लिए प्रकट करता है, जहां वे एफेसियों के समुदाय के लिए प्रज्ञा और आध्यात्मिक दृष्टि की याचना करते हैं, जिससे वे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के रहस्यमय जीवन को सचमुच जान सकें और उन्हें पूर्ण रूपेण समझ सकें। वे अपने बुलाए जाने अर्थात अपने जीवन के अर्थ को समझ सकें कि हम सबों का जीवन जो हमें विरासत में मिली है कितनी वैभवपूर्ण और महिमामय है। श्रोताओ, आज का सुसमाचार जिसे हमने सुना संक्षिप्त रूप में यीशु की प्रेरिताई का सार प्रस्तुत करता है, जो धर्म ग्रंथ का केंद्र बिंदु है। यीशु ख्रिस्त अपने पिता के पास लौटने के पूर्व पुनः उन बातों को शिष्यों के लिए दोहराते हैं कि उनके बारे में क्या कहा और लिखा गया है, जिसकी चर्चा उन्होंने उन्हें अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के पहले भी तीन बार की थी। उन्हें अपने पिता की ओर से मेल मिलाप का कार्यभार सौंपा गया था। अपने जन सामान्य जीवन की शुरुआत करते हुए यीशु ने अपने उपदेश में लोगों से कहा, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। यीशु के पहले योहान बपतिस्ता ने यर्दन नदी में लोगों को बपतिस्मा देते हुए अपने उपदेश में इसी बात पर बल दिया। यीशु ख्रिस्त मानव को पापों से बचाने हेतु आए, क्योंकि आदम के द्वारा किए गए पाप के कारण अन्य दूसरे पापों के प्रसार ने मानव को अनंत मृत्यु का शिकार बना दिया था। अपने पिता के कार्य को पूरा करते हुए यीशु ने अपने जन सामान्य जीवन में लोगों को पाप के बंधनों से मुक्त किया, जो उनमें कई तरह की बीमारी और दुख तकलीफ का कारण बनी थी। यीशु ख्रिस्त के द्वारा अंधों, लंगड़ों, बहरों, कोढ़ियों की चंगाई और अपदूतों को निकालने में हम यीशु को पाप के सौदागर शैतान से युद्ध करता पाते हैं। वे पापियों से मित्रता करते और उन्हें अपने पापों के लिए पश्चाताप करने का संदेश देते हैं। वे अपने पास नम्रता और दीनता में आने वालों के पापों को क्षमा करते और उन्हें नए जीवन का उपहार प्रदान करते हैं। मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त क्रूस के काठ पर टंगे होते हुए भी अपने अत्याचारियों के पापों को क्षमा कर देते और हमारे लिए अपने पिता द्वारा दिए गए प्रेमपूर्ण मेल मिलाप के कार्य का सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। श्रोताओ, अपने पिता के पास लौटने के पूर्व यीशु हमें पिता की ओर से एक मूल्यवान वरदान की प्रतिज्ञा करते हैं और उसके आने तक वे अपने शिष्यों को यरूशलेम में ही एक साथ जमा होकर रहने को कहते हैं। आइए हम यीशु ख्रिस्त से निवेदन करें कि वे हमें अपने को उसी आत्मा से पोषित करें, जिससे हम उनके सुसमाचार मेल मिलाप की प्रेरिताई को दुनिया के लोगों तक ले जाने के योग्य बन सकें।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पृथ्वी हमारे आम घर की देखभाल पर विशेष ध्यान देने का प्रोत्साहन देने हेतु 22 से 29 मई को लौदातो सी सप्ताह मनाया जा रहा है। संत पापा फ्रांसिस ने इस प्रयास में एकजुट होने का प्रोत्साहन दिया है। संत पापा ने 28 मई को एक ट्वीट प्रकाशित कर कहा, आज मैं आप लोगों को निमंत्रण देता हूं कि हमारे धर्म सामाजिक समुदायों के लिए एक साथ प्रार्थना करें, ताकि वे आम घर की देखभाल में एवं सबसे कमजोर लोगों के बीच नबी के समान सेवक बन सकें। लौदातो सी सप्ताह की विषय वस्तु है सुनना और एक साथ यात्रा करना। मंगोलिया के बौद्ध प्रतिनिधि मंडल ने परमधम पीठ एवं मंगोलिया सरकार के बीच राजनयिक संबंध स्थापित किए जाने के 30 साल बाद पहली बार 28 मई को वैटिकन का दौरा कर संत पापा फ्रांसिस से मुलाकात की। वैटिकन रेडियो से बातें करते हुए मंगोलिया की राजधानी उलान बतार के प्रेरित प्रशासक फादर जोर्जो मोरेंगो ने मुलाकात को अंतर्धार्मिक वार्ता हेतु एक महत्वपूर्ण कदम बतलाया। उन्होंने कहा, हम इस घटना से बहुत खुश हैं, जिसके लिए हम अंतर्धार्मिक वार्ता हेतु गठित परमधम पीठ समिति के साथ बड़े सहयोग एवं समर्थन के साथ करीब 2 सालों से काम कर रहे थे। उन्होंने याद किया कि मंगोलिया बौद्ध के विशिष्ट लोगों ने पहले भी वैटिकन की यात्रा की थी, किंतु वे आधिकारिक यात्रा नहीं थी। प्रेरित प्रशासक ने कहा कि यह पहली बार है जब प्रतिनिधि मंडल ने संत पापा से मुलाकात की है, अतः यह अंतर्धार्मिक वार्ता का एक महत्वपूर्ण अध्याय है जिस पर मंगोलिया की कलीसिया विशेष ध्यान देती है। मध्य एशियाई देश में करीब 1400 कैथोलिक और 8 पलिया हैं। फादर मोरेंगो ने सच्चाई बतलाते हुए कहा कि हम कलीसिया की इस छवि को पसंद करते हैं जो प्रेरित चरित्र की कलीसिया के समान है। उन्होंने कहा, यह महान मिशनरी उत्साह का परिणाम है। फादर मोरेंगो ने बतलाया कि पहले दशक में साम्यवादी शासन के अंत के बाद मिशनरियों के पहले दल ने सुसमाचार प्रचार का कार्य किया, जिसने देश में धार्मिक स्वतंत्रता को वातानुकूलित किया था। दूसरे दशक को फादर मोरेंगो ने पहले ख्रिस्त समुदाय की स्थापना एवं स्थानीय लोगों द्वारा विश्वास की यात्रा की शुरुआत के रूप में वर्णित किया। तीसरे दशक में पहले पुरोहित का अभिषेक 2016 में संपन्न हुआ, जिससे वे एक उभरती हुई कलीसिया के लिए पौत्र आत्मा का महान वरदान मानते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने मंगोलिया के बौद्ध प्रतिनिधि मंडल से वैटिकन में 28 मई को मुलाकात करते हुए उन्हें अंतर्धार्मिक वार्ता के लिए प्रेरित किया। ताकि जीवन के हर क्षेत्र में अहिंसा को अपनाते हुए मानवता को मदद दी जा सके। शनिवार को संत पापा ने वैटिकन में मंगोलिया के बौद्ध प्रतिनिधि मंडल का सहर्ष एवं सम्मानपूर्ण स्वागत किया तथा कैथोलिक कलीसिया के साथ आपसी समझदारी के माध्यम से शांतिमय समाज बनाने की उनकी चाह की सराहना की। संत पापा ने कहा, शांति आज मानवता की प्रबल अभिलाषा है। परिणामता शांति और अहिंसा की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सभी स्तरों पर बातचीत की तत्काल आवश्यकता है। यह वार्ता सभी लोगों को हर प्रकार की हिंसा को समाप्त करने का निमंत्रण दे, जिसमें पर्यावरण के प्रति की गई हिंसा भी शामिल है। संत पापा ने खेद प्रकट किया कि इस समय भी कुछ लोग हिंसा एवं घृणा को न्याय संगत ठहराने के लिए धर्म को माध्यम बना रहे हैं।
संत पापा जॉन पॉल द्वितीय और संत पापा बेनेडिक्ट 16वें के समय में रहे वाटिकन राज्य सचिव और कार्डिनल मंडल के डीन सेवानिवृत्त कार्डिनल आंजेलो सोदानो का 27 मई की शाम को रोम में 94 वर्ष के आयु में निधन हो गया। उन्हें 9 मई शाम को कोलंबस अस्पताल जेमेली में निमोनिया के लिए भर्ती कराया गया था। कार्डिनल सोदानो 1991 से 2006 तक वाटिकन राज्य सचिव का पद संभाला और 2005 से 2019 तक कार्डिनल मंडल के डीन थे। कार्डिनल आंजेलो का जन्म इसोला दी स्टी पिएमोंट के एक ग्रामीण परिवार में 23 नवंबर 1927 को हुआ। युवा आंजेलो ने एसटी के धर्म प्रांतीय सेमिनरी में दर्शन शास्त्र और ईश शास्त्र की पढ़ाई पूरी की। 23 सितंबर 1950 को एसटी के महागिरजाघर में उनका पुरोहिताभिषेक हुआ। उन्होंने परम धर्म पीठीय उपशास्त्रीय अकादमी पाठ्यक्रमों में भाग लिया। फिर उन्हें इक्वाडोर, उरुग्वे और चिली में राजदूत के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। 1968 में वे रोम लौट आए, जहां उन्होंने एक दशक तक कलीसिया के सार्वजनिक मामलों की परिषद में अपनी सेवा दी। 30 नवंबर 1977 को संत पापा पॉल सस्थम ने उन्हें नोवाडी से सारे का महाधर्माध्यक्ष और चिली में वाटिकन के प्रेरितिक राजदूत नियुक्त किया। 1988 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने उन्हें वाटिकन के तत्काल सार्वजनिक मामलों की परिषद के सचिव के कार्यालय के कार्डिनल सिल्वेस्टनी की जगह लेने के लिए बुलाया। एक साल बाद उन्होंने वाटिकन विदेश सचिव का पद ग्रहण किया। दिसंबर 1990 में उन्होंने कार्डिनल बनाए जाने के एक दिन बाद 29 जून 1991 को वाटिकन राज्य सचिव का पद ग्रहण किया और 2005 में संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने राज्य सचिव के पद से उनका इस्तीफा स्वीकार किया। संत पापा फ्रांसिस ने अपने शोक संदेश में कार्डिनल आंजेलो सोदानो द्वारा की गई परम धर्म पीठ की लंबी सेवा को याद किया। संत पापा ने कहा कि उन्होंने समर्पण और अनुशासन के साथ अपने मिशन को पूरा किया है। मैं भी अपने मन और हृदय के उपहारों से लाभान्वित होने में सक्षम था, विशेष रूप से उस समय के दौरान जब उन्होंने कार्डिनल मंडल के डीन के रूप में कार्य किया। उन्होंने उदारता के साथ अपना पुरोहिताई जीवन व्यतीत किया। रोमन कोरिया में उन्होंने अनुकरणीय समर्पण के साथ अपने मिशन को पूरा किया और हर स्थिति में वे कलीसियाई रूप से अनुशासित एवं कलीसिया के प्यारे चरवाहे साबित हुए। कार्डिनल सोदानो की बहन मरिया सोदानो को संबोधित टेलीग्राम में संत पापा फ्रांसिस ने कार्डिनल सोदानो के परिवार के सदस्यों और एसटी समुदाय के लिए प्रार्थना के साथ समाप्त किया। संत पापा ने संत मार्था की धर्म बहनों के प्रति विशेष आभार व्यक्त किया, जिन्होंने प्यार से उनकी सेवा की थी। उधर बुर्किना फासो के मज्जोरी क्षेत्र के गवर्नर के आधिकारिक बयान अनुसार बुधवार को सशस्त्र हमलावरों ने हमले के दौरान कम से कम 50 नागरिकों को मार दिया। हमला तब हुआ जब नागरिक बेनिन और टोंगो के साथ सीमाओं के करीब पामा कम्यून वाहन में यात्रा कर रहे थे। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।